श्री वसुदेव जी नारद जी जैसे वैष्णव पुरुष की साधु पुरुष की महिमा बता रहे हैं और यह कहते हैं कि इस जगत में यद्यपि देवता सभी गुणों में सबसे बढ़ करके हैं, परंतु भगवान विष्णु के भक्तों की तुलना साधुओं से करना अनुचित है। देवताओं से करना अनुचित। वे कहते हैं कि देवता उतने कृपालु नहीं होते हैं जितने भगवान के भक्त। भूतानाम देव चरितम दुखाय च सुखाय च। भूतानाम का अर्थ है यहाँ भूतेषु, जीवों के प्रति। जीवों के प्रति देवताओं का जो आचरण है देखा गया है तो कभी कभी दुख के लिए भी होता है। देवता गण दुख देते हैं, इसकी व्याख्या सवेरे के बैठक में हो चुकी है। और सुखाए चो, वैसे तो देखा जाए तो 95% देवता सुख ही देते हैं, हम सबका पालन कर रहे हैं। जैसे भगवान सूर्य या पृथ्वी माता, वरुण देव, वायु देवता, ये सब मिलकर इस विश्व की व्यवस्था कर रहे हैं। ये देवता सभी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं और भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं। बहुत बड़ी व्यवस्था है इस विश्व व्यवस्था, और इसमें व्यवस्थापक सब देवगण हैं। तो देखा जाता है कि देवताओं का जो आचरण है वह जीवों के सुख देने के लिए है, परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दुखाय च, वे दुख भी देते हैं जीवों के कर्मानुसार। परंतु सुखाय वही साधु नाम त्वादृशाम अच्युतात्मना। परंतु आप जैसे विष्णु गत चित्त महात्मा जन जीवों के केवल सुख के लिए ही कार्य करते हैं, कभी दुख नहीं देते। सुखाय एव, सुख के लिए ही। जिन्हें पुरुषों के, जिन्हें भक्तों के मन में भगवान विष्णु बैठे हैं उनकी छवि उभरी हुई रहती है, वे इतना तृप्त रहते हैं कि कौन जीव उनका अपमान कर रहा है, उनको दुख दे रहा है, इसका भी भान नहीं होता है। वे प्रतिशोध नहीं लेते हैं, बदला नहीं लेते हैं कभी। भगवान से मिलने वाले सुख में वे विभोर रहते हैं, इसी कारण से वे इतने कृपालु होते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्वा, गोविंद श्री अच्युत उनके हृदय में रहते हैं। भगवान को अच्युत क्यों कहते हैं? ऐसे एक परिभाषा दी गई है एक श्लोक में कि महान विपत्ति में भी, प्रलय काल में भी, जिनके भक्त अपने ऐश्वर्य से च्युत नहीं होते हैं उनको अच्युत कहते हैं। और वैसे अच्युत का और भी अनेक अर्थ होगा कि जो रूप, गुण, सौंदर्य, कृपा, ऐश्वर्य आदि से कभी भी च्युत नहीं होते हैं, वे हैं अच्युत। इस संसार में बाकी सब लोग च्युत हैं। आज जवानी है, कुछ शक्ति है, बुढ़ापे में सारी शक्ति च्युत हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सारे गुण चले जाते हैं जीवों के, यहाँ तक कि यह शरीर भी चला जाता है, धन चला जाता है, पद चला जाता है, लोक छूट जाता है, स्वजन भी छूट जाते हैं। लेकिन भगवान के परिवार में आज तक एक व्यक्ति भी कभी बिछुड़ा नहीं। आप देखेंगे इतिहास, केवल दो व्यक्ति आए थे इस संसार में वैकुंठ से, परंतु पीछे से परम स्नेह बस भगवान दौड़े दौड़े दो अवतार लेकर के आ गए उनके लिए। और इतना ही नहीं, दो ही नहीं, तीन तीन अवतारों में भगवान के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ क्या हुई? वो संग मिल रहा था, भगवान अपने भक्तों को भूल नहीं पाए। उसने बस आते रहे इस जगत में, आते रहे, लीला करते रहे। एक को नरसिंह रूप से भगवान ने मारा और दूसरे को बारह रूप से, बाद में फिर श्री राम रूप से संहार किए, रावण और कुंभकर्ण बने हुए, और बाद में स्वयं अपने स्वरूप से शिशुपाल और दंतवक्त्र बने थे, और इसके बाद में भगवान के धाम में लौट गए। तो श्री कृष्ण अच्युत है। इधर कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें लोग मरते ना आए हों। नए नए बच्चे जन्म लेते हैं और बूढ़े बूढ़े चले जाते हैं, ये सब च्युत परिवार। भगवान के परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। जद गत्वा न निवर्तन, ये इसलिए उनको अच्युत कहते हैं। तो जिनका चित्त अच्युत में लगा है उनको अच्युत आत्मा कहा जाता है। आत्मा का अर्थ मन, जिनका मन है भगवान में, विष्णु में लगा हुआ है, वे बड़े दयालु होते हैं, केवल कृपा ही करते हैं, केवल सुख ही देते हैं जीवों को। और देवताओं से और तुलना कर रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे हैं, तुलना करना तो अपराध है। वे कह रहे हैं कि देवता सुख देते हैं जीवों को, तो वह भी भजनानुसार ही देते हैं। यदि उनका कोई भजन किया है तब लोग स्पेशल सुख देते हैं, नहीं तो नहीं देते। भजन तो ये जथा देवान, देवा अपि तथा वतान। तो यह तो गीता के श्लोक से मेल कर रहा है कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथा व भजन। लेकिन वास्तव में इस श्लोक में और भगवान के द्वारा बोले हुए श्लोक में बहुत भेद है। तो भजन्ति ये जथा देवान, ये देवान जथा भजन्ति, देवा अपि तथैव तान भजन्ति। भजन का यहाँ अर्थ है प्रेम करना, व्यवहार करना परस्पर। तो देवताओं का जो जैसे भजन करते हैं, देवताओं को जैसे मानते हैं, तो देवता भी उनको वैसे ही मानते हैं। तो यहाँ भजन का अर्थ यह है कि देवताओं के लिए यदि जीव कुछ करते हैं तो उनके कर्म और वस्तु के अनुसार देवता व्यवहार करते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान भाव के अनुसार व्यवहार करते हैं, वस्तु के अनुसार नहीं। नहीं तो भगवान को एक तुलसी दल और गंगा जल दो बूंद दे करके और उनको खरीदा जा सकता है। देवता ऐसे नहीं है। देवताओं को बहुत मात्रा में भोग चाहिए, कुछ चाहिए, तब वो लोग कृपा करते हैं। तो भगवान के भक्तों में अच्युत के गुण आ जाते हैं, श्री कृष्ण के गुण आ जाते हैं, इसलिए वे भी किसी से किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते हैं और किसी के द्वारा किए गए अपराध का कभी स्मरण नहीं करते हैं। भगवान का सारा गुण वैष्णव में उदित हो जाता है सब कुछ। तो भजन्ति ये जथा देवान, देवा अपि तथैव तान, छायेव कर्म सचिवा साधव दीनवत्सला। ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि यह वाक्य या ये वक्तव्य भगवान के पिता श्री वसुदेव जी के हैं। बहुत महत्वपूर्ण उक्ति बोली जा रही है, कोई देवताओं के प्रति हीन भावना करके नहीं बोल रहे हैं, परंतु देवताओं से वैष्णव अधिक दयालु होते हैं, स्नेह करते हैं जीवों से, इस बात को वे कह रहे हैं। और श्री नारद जी बैठ कर अभी सुन रहे हैं। छाये व कर्म सचिवा, देवगण छाया की तरह कर्म के सहायक हैं। सचिव का अर्थ होता है सहायक, कर्म सहाया, कर्म सचिवा। जैसे मनुष्य के शरीर की छाया होती है, जैसे जैसे मनुष्य करता है वैसे वैसे छाया करती है, छाया ही वह कर्म सचिवा। तो देवता लोग जीवों के कर्म को पढ़ लेते हैं और उनके कर्म के अनुसार उनको सुख या दुख वे देते हैं। और चूंकि भगवान ने यही उनको कहा है कि यही करना है, जो जैसा कर रहा है उसको ऐसा फल दिया करो, जैसे जमराज जी, जमराज जी को भगवान ने सुप्रीम जज के पद पर नियुक्त किया है और कहा है कि जो लोग गलती करते हैं उनको नरक में ला ला करके दंड दिया करो। तो अनुलंघित भगवत शासन, श्री जमराज जी भगवान की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। वो सब कुछ लिखा हुआ है, यह पाप किया है तो इसको इस नरक में और इतना दिन और इतना क्वालिटी से दुख देना है, और नहीं पाप किया है तो नहीं करना है। तो इतने बड़े व्यक्ति हैं श्री जमराज जी, पर उनसे भी एक बार बहुत भारी भूल हो गई। वो अजामिल के पिछले पापों के इतिहास को तो सब देख रहे थे, लेकिन भगवान नाम उच्चारण किया था बारंबार, उसको वे नहीं देख रहे थे। बहुत बड़ी भूल हो गई। जब जाकर के उनके दूतों ने कहा कि आप किस प्रकार से हमको भेजे थे अजामिल को लाने के लिए, इतना बड़ा पापी है आपने कहा था, लेकिन चार सिद्ध आए और उसको छुड़ा दिए। हमें पता नहीं चल रहा है कि इस संसार में आपका शासन चल रहा है कि किसी और का चल रहा है। हम तो जानते थे कि आप ही ईश्वर हैं, सबके नियंता हैं, लेकिन अब आपका शासन नहीं चल रहा है। प्रथम बार ऐसा हुआ था कि जमराज जी के द्वारा सेट किए हुए दंड को तोड़ दिया गया, और जमराज के दूत वहां से भाग आए, नहीं तो अगर वो पुनः अजामिल को स्पर्श करते, रस्सी से खींचते, तो फिर जीवित नहीं लौट सकते थे संयमनीपुरी। जमराज जी न्यूज पेपर में पढ़ते कि उनके तीन दूत मर गए वैसे वो नहीं पा सकते थे खबर। वो बेचारे बहुत दुख में थे कि हाय रे, ऐसा कैसे हो गया, गुंडों का राज आ गया, जमराज जी का शासन ये चार गुंडे आकर के खत्म कर दिए। वो ये सोच रहे थे कि ये कैसे इतने सुंदर हैं लेकिन इतने बदमाश कि अजामिल जैसे पापी का पक्ष करने लगे। बताओ जब अजामिल नरक में नहीं जाएगा तब तो पापी लोग खुल कर पाप करेंगे कि अब तो नरक में जाना है नहीं, अजामिल को दृष्टांत बनाएंगे। तो ये लोग जमराज जी के पास जाकर बहुत परेशान मन से पूछ रहे थे, कति संति है शास्त्रारो जीव लोकस्य वै प्रभु, प्रविध्यम कुर्वतः कर्म फलाभि व्यक्ति है तव। जमराज जी को उस दिन वो प्रणाम भी नहीं किए, इतना दुखी थे। जाते जाते पूछे कति संति है शास्त्रारो, पहले यह बताइए कि इस जगत में कति शास्त्रार संति, कितने शासक हैं, कितनी गवर्नमेंट चल रही है इस ब्रह्मांड में, ये बताइए। तो जमराज जी तो चकित हो गए, क्या हो गया, ऐसा कभी नहीं पूछे, कभी नहीं पूछे। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, अरे क्या हुआ, उस पापी को लाने गए थे और चार सिद्ध आ करके उसको छुड़ा दिए, और हम लोग यदि और ज्यादा किए होते, जबरदस्ती किए होते तो बस प्राण ही चला गया होता। कैसे थे, कैसे थे, जमराज जी पूछ रहे हैं क्या उनका स्वरूप था। तो कहते सभी चार भुजा वाले थे, सभी परम सुंदर और बहुत अलंकार धारण किए थे, सांवले शरीर वाले थे, सिर पर मुकुट लगाए थे, हाथों में कुंडल शंख चक्र गदा लेकर के वे लोग आए थे, बहुत तेज हथियार था, सुदर्शन चक्र हाथ में गदा। तो हम लोग सरकार इतने पराभव को प्राप्त हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था, हम लोग तो आपके आदमी हैं, आप मतलब सबसे बड़े ईश्वर। पहले ये बताइए कि वो कौन है, और चारों को मंगा करके इस नरक में, और यदि आप नहीं पिटवाए तो आज से आप जैसे जुगनू की नौकरी हम नहीं करें। हम भी अपने बच्चों के लिए नौकरी कर रहे हैं ना, कहीं गए पापी को पकड़ने और हमको मार दिया गया तो हमारे बाल बच्चा का, हमारी पत्नी का कौन होगा। अब इस तरह से बोल रहे थे, ठीक है। इतने पर भी जमराज जी ने कहा आखिर क्या बात हुई, क्या बात हुई कि चारों सिद्ध आ गए। कुछ नहीं, वो बोला नारायण आया, अपने पुत्र के लिए कहा कि हे नारायण आओ, बस इसी पर चारों धमक गए और कहने लगे स्पर्श मत करो, छुओ मत, अन्यथा जान से मार देंगे। तो यही बस नारायण नाम सुनना, तो श्री जमराज जी इतना सुनते ही बिल्कुल समझ गए। अब तो उनको अपनी भूल स्मरण आने लगी कि अजामिल तो बारंबार नारायण शब्द बोला है, जब से बच्चे का नामकरण हुआ था उसी समय से नारायण नारायण रटता रहता था। नारायण खाया कि नहीं, नारायण को स्कूल भेजना है, स्कूल से लाना है, नारायण बीमार है क्या, नारायण कचुम्बन, नारायण को उठाना, नारायण आओ नारायण, तो बारंबार भगवान का नाम ले रहा था। तो मैं यह कह रहा था कि श्री जमराज जी से एक बार यह भूल हुई थी, बस। और एक बार और भी इतिहास बताता है, दो ही बार ऐसा कि मांडव्य ऋषि को उन्होंने सूली पर चढ़ाया था, ये दुख दिया गया था। वो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे थे, 7 वर्ष के, और किसी कीड़े के पूछ में उन्होंने सीख खोसा था, तो इस पर मांडव्य ऋषि ने साफ दे दिया था, शूद्र हो जाओ, तुमको कोई ज्ञान नहीं है दंड देने का, एक निरपराध बच्चे के द्वारा किए हुए कर्म के अनुसार तुम दंड दिए हो, इस पद पर रहने लायक नहीं। तो 100 वर्ष तक विदुर जी के रूप में इस जगत में जन्म लिया। तो देवता कर्मों के अनुसार जीवों को सुख दुख देते हैं, परंतु भगवान के भक्त कर्म नहीं देखते, कुछ भी किया हो उसको सुख ही देते हैं, कभी ये नहीं सोचते हैं जैसा कर्म किया भोग रहा है हम क्या करें, नहीं। साधवो दीन वत्सला, साधु जन दीन वत्सल होते हैं, हमेशा कृपा ही करते रहते हैं, कृपा ही करते रहते हैं। तो अब श्री वसुदेव जी यह कह रहे हैं कि यद्यपि तवागमन मात्रेण वयम कृतार्था तथापि भागवतान धर्मान पृच्छे, ब्रह्मंस्तथापि पृच्छामो धर्मान भागवतांस्तव। हे ब्राह्मण, यद्यपि आपके आगमन मात्र से हम कृतार्थ हो गए हैं, वयम शब्द यह बता रहा है कि माँ देवकी भी वहीं बैठी है और भी वसुदेव जी की पत्नियां हैं और छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, सारा समाज जुटा है सत्संग करने के लिए नारद जी का। गृहस्थों को इस तरह दीन भाव से रहना चाहिए, किसी साधु का समागम हो तो सबको जुट जाना चाहिए। वयम शब्द श्री वसुदेव जी बोल रहे हैं। यद्यपि आपके घर में आगमन मात्र से हम कृतार्थ हो गए हैं, हम सफल जन्मा हो गए हैं, फिर भी ब्रह्मन तथापि पृच्छामो, फिर भी हम पूछ रहे हैं भागवतान धर्मान, कृपया भागवत धर्मों का वर्णन कीजिए। वास्तव में किसी साधु के घर में आगमन मात्र से गृहस्थ का बहुत बड़ा हित होता है, परंतु यदि साधु के मुख से सुना जाए तो वह और अधिक अधिक लाभदायक होता है। आप ध्यान से इस बात पर विचार कीजिए, भगवान के पिता श्री वसुदेव जी श्री नारद जी के मुख से सुनना चाहते हैं, सुनना ही सबसे बढ़ करके है, सत्संग का अर्थ ही है कि साधुओं के मुख से सुनना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म का अर्थ होता है, भागवत धर्म को ही भगवत धर्म भी कहते हैं, तो भगवत धर्म या भागवत धर्म का अर्थ होता है भगवान के प्रति जीवों का कर्तव्य, जीव का जो वास्तविक कर्तव्य है उसको भागवत धर्म कहते हैं। आगे भागवत धर्म की परिभाषा आएगी, इसलिए हम यहाँ बहुत व्याख्या नहीं करते हैं। श्री चैतन्य चरितार्थ में कहा गया है कि सर्व देशे सर्व काले जीवे जने र कर्तव्य से ही भक्ति गुरु पासे प्रष्टव्य श्रोतव्य, जो सभी देश में और सभी काल में जीव का जो स्वरूपगत कर्तव्य है, स्वरूपानुबंधी कर्तव्य है, उसको भागवत धर्म कहा जाता है, जिसे अवश्य करना चाहिए। और जो कर्तव्य है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, ये देश के प्रति, वह एक सीमा में है, एक सीमित देश में है और सीमित काल में है, बाद में वो बदल जाता है। जैसे स्त्री धर्म है, आज कोई व्यक्ति स्त्री के शरीर में है तो स्त्री के नियमों का उसे पालन करना पड़ता है, लेकिन दूसरे जन्म में यदि वो पुरुष हो जाए तो अब स्त्री के धर्म का पालन नहीं करेगा और पुरुष धर्म में का पालन करेगा। इसी तरह आज गृहस्थ है तो गृहस्थ के धर्म का पालन कर रहा है, कल हो सकता है कि वह सन्यासी हो जाए तो वो सन्यास धर्म का पालन करेगा। यह क्रम है। बाद में वानप्रस्थ होता है, वानप्रस्थ के बाद सन्यास होता है। कलयुग में सन्यास से लोग गृहस्थ हो जाते हैं, पहले ऐसे नहीं होते थे। ये रिवर्स हो गया, उल्टा होने लगा है। ये अद्भुत बात है, ये भ्रष्टाचार है, आश्रम बदलना नहीं है। ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए वास्तव में समाज में। इस तरह का व्यवहार नहीं चलता है। तो जैसे वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, तो उसमें परिवर्तन देखा जाता है। कुछ काल तक ही व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है या गृहस्थ रहता है, वानप्रस्थी रहता है, सन्यासी रहता है, परंतु भागवत धर्म वह है जो जीव के जन्म जन्म में साथ ही लगा हुआ है, स्वरूप के साथ है। स्वरूप का अर्थ है कृष्ण को समझना और उनसे प्रेम करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वह नित्य दास है जीव कृष्ण का, तो इसलिए कृष्ण से प्रेम करना यही भागवत धर्म है। तो श्री वसुदेव जी भागवत धर्मों के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। भगवान में सुदृढ़ अनुराग पाने के लिए बहुत से नियम बनाए गए हैं जिनको भक्ति के साधन कहते हैं। जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद शास्त्रों के आधार पर 64 भक्ति के अंगों का वर्णन किए हैं, तो इनको भागवत धर्म कहते हैं। फिर उसी को कई कई तरह से संक्षेप में किया जाता है अनेक बार, तो अंत में नवधा भक्ति कहते हैं। 9 प्रकार के साधन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्री भगवान उसी को, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उसी को 5 कहे हैं जिनको महासाधन कहते हैं। श्री मथुरावास, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, श्री विग्रह की श्रद्धा से सेवा, नाम संकीर्तन और सजातीय वासना विशिष्ट वैष्णवों का संग, ये 5 महासाधन बताए गए। भागवत धर्मों के विषय में बहुत पहले से ही जिज्ञासा चल रही है। भगवान के धाम में श्री द्वारका जी में वसुदेव जी नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। मनुष्य जो कुछ भी उपलब्ध कर सकता है अपने जीवन में, वास्तव में सबसे बड़ा धन है भगवान के भक्तों के मुख से सुनना सुपीरियर विषयों को भगवान के बारे में। और जहां भागवत धर्म का प्रश्न होता है तो वहां पर यह कहा जाता है कि भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना ही भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म के अंदर ही भगवान का पूरा वर्णन आता है। तो भगवान क्या है, तो भगवान के रूप गुण लीला आदि का वर्णन करना पड़ता है। तो यह भी भागवत धर्म है, जानना भगवान को और उसके अनुसार करना। तो हम आपसे भागवत धर्म के विषय में पूछ रहे हैं। और श्री वसुदेव जी स्वयं ही कहते हैं कि यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात् या विश्वतो भयात्, जो भी हो। भागवत धर्म ऐसे हैं कि जिनको सुनने मात्र से, श्रद्धा से कोई सुने तो सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रद्धया एक शर्त रखी गई है, जन श्रद्धया श्रुत्वा, भगवान के प्रति जो जीवों के कर्तव्य हैं या भगवान का जो वर्णन है, व्यक्ति श्रद्धा से उसको सुन ले तो मुच्यते सर्वतो भय। इससे यह सिद्ध हुआ कि भागवत धर्म में जो भी हम कर सकते हैं उसमें सबसे बढ़ करके है श्रवण। यह वाक्य बता रहा है भगवान के प्रति अर्पित किए जाने वाली अनेक भक्ति है, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ है श्रवण। यन श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भय। मर्त्य का अर्थ होता है मरने योग्य। मर्त्य इस संसार में आप देखते हैं बहुत से मनुष्य हैं, बहुत से जीव हैं, और विविध जीवों में विविध क्वालिफिकेशन है, गुण है, ये है वो है, लेकिन सबसे बेस्ट गुण क्या है किसी जीव में, वह यह है कि वो मर जाएगा, यही सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए इसको मर्त्य कहते हैं। और चाहे कोई गुण हो या ना हो, लेकिन मरने का गुण है इसीलिए मर्त्य कहते हैं, और विशेष करके मनुष्य को मर्त्य कहते हैं। मर्त्य का अर्थ है मरने योग्य, क्वालिफाइड टू डाई, यह मर्त्य का अर्थ है। तो जो इस प्रकार मृत्यु के पंजे में फंसा हुआ जीव है, वह भागवत धर्मों को केवल श्रद्धा से सुन ले तो मुच्यते सर्वतो भयात्, सब भय से मुक्त हो जाते, संसार बंधन से छूट जाते। इसीलिए हम सुनना चाहते हैं, श्री वसुदेव जी यह कह रहे हैं। यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। सर्वतो भयात् से तात्पर्य है जन्म मृत्यु से, कर्म बंधन से, सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, और भगवान का पार्षद बनता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। तब श्री नारद जी कहते हैं किम त्वत्तः अन्यः कोपि भगवत प्रसाद पात्र। हे श्री वसुदेव जी, क्या आपसे भी बढ़ करके कोई भगवत प्रसाद का पात्र इस संसार में है? आप क्यों ऐसे प्रश्न कर रहे हैं? जैसे लगता हो कि वसुदेव जी जन्म मृत्यु में पड़े हुए हैं और एक ऋषि के, एक साधु के आने पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं कि हमको भय से मुक्त कीजिए, संसार बंधन से मुक्त कीजिए, भागवत धर्म सुनाकर। तो नारद जी कहते हैं कि आप कैसे सोच रहे हैं, आपसे बढ़ करके इस विश्व में भगवत प्रसाद का पात्र कोई नहीं, भगवान जितना आप पर प्रसन्न है उतना अन्य किसी पर नहीं। आज भी भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है, ये उनका परिचय है, वसुदेव जी के पुत्र। तो आप क्यों इतना खेद कर रहे हैं अपने विषय में, आप तो पूर्ण हैं, सब तरह से धन्य हैं। तो श्री वसुदेव जी कहते हैं हाँ, लेकिन मेरे मन में पुत्र प्राप्ति की लालसा थी। मैं पहले भगवान से जो प्रेम किया, भगवान की पूजा किया, वो पुत्र के लिए। सूतिका गृह में भगवान ने जो इनसे प्रवचन किया था, मथुरा के कारागृह में, उसकी याद करके कह रहे हैं। भगवान ने कहा था कि आप मेरा भजन किए तो मेरे जैसा पुत्र चाहते थे, लेकिन मैंने देखा कि मेरे जैसा दूसरा भगवान तो है नहीं तो इसीलिए मैंने सोचा अब तो मुझे पुत्र बनना पड़ेगा आपका, तो मैं आपका पुत्र बना। पहले कृष्णी गर्भ नाम हुआ, बाद में वामन, और इस समय कृष्ण। तो मैं इसलिए चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ कि आपको मेरे विषय में ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, अन्यथा यदि मैं मनुष्य के रूप में द्विभुज आकार में जन्म लेता है तो शायद आप मुझे नहीं पहचान सकते थे। और भगवान अद्भुत बोले, यह कह करके अंत में कहते हैं, पिताजी यदि आप मेरे विषय में बहुत अधिक भयभीत हैं, कंस से डरते हैं, तो हमको छिपा करके नंद बाबा के घर में पहुंचा दीजिए इस तरह भगवान वात्सल्य उद्भावित कर रहे हैं, हृदय में वात्सल्य जगा रहे हैं। एक ही साथ ये कहते हैं कि मैं इस जन्म में आपका पुत्र बना, आपने तप किया, ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया, तीन तीन बार आपका पुत्र बना हुआ। फिर कहते हैं कि यदि कंस विभेषित तरही माम गोकुलम नया, यदि आप कंस से बहुत डरते हैं तो मुझको गोकुल पहुंचा दीजिए, मैं वहां सेफ रहूंगा वहां कंस नहीं मार पाएगा मुझको। और वसुदेव जी का वात्सल्य देखिए, भगवान के इस आज्ञा को पा करके वे वही किए। भगवान को गोद में ले करके भी और चलते गए। भावना यही थी कि अपने पुत्र की रक्षा करनी। बहुत भारी विपत्ति में है, जन्म लेते ही इस पर प्राण संकट आ गया है, यह भावना। तो एक चोर की तरह श्री वसुदेव जी मथुरा के कारागृह से अपने पुत्र को गोकुल लेकर के चले थे। कितनी वात्सल में स्नेहमयी भावना होगी उनकी। तो अब तक वे यही सोच रहे हैं, अहम किल पुरानंतम प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम अपूजयम न मोक्षाय मोहितो देव माया। मैं क्या कहूँ देवर्षि जी, मैं भगवान की माया से ऐसा मोहित हूँ कि मैं भगवान का भजन किया भगवान को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए। देव माया मोहित, मैं देव माया से मोहित। देव का अर्थ है श्री कृष्ण, माया का अर्थ है जोग माया है। वास्तविक अर्थ यह है कि श्री वसुदेव जी भगवान की अंतरंगा शक्ति से मोहित, योग माया से मोहित, इसीलिए भगवान को अपने पुत्र रूप में पाना चाहते। परंतु आज इस बात को वे अन्यथा रूप में कह रहे हैं कि मैं प्रजार्थ था। प्रजार्थ का अर्थ पुत्र प्राप्ति की कामना वाला, पुत्र लाभ प्रयोजना। मैं यही मानता था कि हमको पुत्र के रूप में भगवान मिल जाएंगे तो मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं यह देखता हूँ कि भगवान मेरे पुत्र हो गए हैं, फिर भी मैं इसी जाल में हूँ और भगवान के प्रति मेरी भावना नहीं हो पाती है कि वे भगवान हैं, हमारे आराध्य देव हैं। यही भावना बनी रहती है कि हमारे पुत्र हैं, कैसे सुखी करूँ, का विवाह करके उनको यह करके वह करके। तो मैं तो ऐसे ही माया में रह गया। और ही बाप, यह सोचना कृष्ण के विषय में पुत्र भाव से, यही तो सर्वोच्च सिद्धि है, वास्तव में सबसे बड़ी सफलता। परंतु श्री वसुदेव जी इस तरह से सोच रहे हैं। हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि वसुदेव जी को उनके शब्दों के अनुसार ही नहीं जज करना चाहिए कि अरे वसुदेव जी ऐसे माया में है। नहीं नहीं, माया में कुछ भी नहीं है, वो तो योग माया के कंट्रोल में है। योग माया के कंट्रोल में तो भगवान भी रहते हैं अपने स्वरूप शक्ति के। हम लोगों को कंट्रोल कर रही है महामाया, देह में आत्मबुद्धि उत्पन्न करके। लेकिन भगवान के परिकरों को भगवान की स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति कंट्रोल में रखती है। भगवान के प्रति हमेशा छोटी बुद्धि पैदा करती है, कृष्ण मेरा पुत्र है, कृष्ण मेरा पति प्रिय है, कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण यह है, कृष्ण अबोध है, जैसे माँ यशोदा। वो सोचती है कि कृष्ण को देश काल का ज्ञान नहीं है, छोटा सा बच्चा है, अभी इसको खाने तक का ज्ञान नहीं है, मिट्टी खा लेता है तो पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, तो हाथ पकड़ करके छड़ी दिखाकर डांटती है, क्यों मिट्टी खाए, मिट्टी नहीं खाना है। और जब चोरी करते हैं तो सोचती है कि इसकी आदत बिगड़ती जा रही है, इसको मना करना चाहिए, दंड देना चाहिए, तो उखल में बांधती। भगवान कहे हैं चैतन्य चरितामृत में, माता मोरे पुत्र भावे करे न पालन करे न, माता मोरे पुत्र भावे करे न ताडन, अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन। मेरी माँ मेरी हितैषिता से मेरा हित करने के लिए मुझको डांटती है, मुझे उखल में बांधती है। तो भगवान इस रस के अधिक आस्वादक। यदि श्री कृष्ण को परमेश्वर कहा जाए, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजन, मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ, यह तो ठीक ही है। लेकिन कृष्ण को कहा जाए कि मैं माखन चोर का भजन करता हूँ तो कृष्ण ज्यादा खुश होते हैं। वे आदि पुरुष शब्द वे सुनने के लिए उतना उत्सुक नहीं है। परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, जगदीश्वर, वे तो हैं ही, भगवान का स्वरूप है। परंतु फिर भी वे उस भक्ति रस के आस्वादक हैं, जिस भक्ति में कोई भक्त अपने को सुपीरियर मानता है और श्री कृष्ण को इन्फेरियर मानता है। बुद्धि में, बल में, किसी भी वस्तु में वो कृष्ण को हीन समझता है और कृष्ण से प्रेम करता है। तो श्री वसुदेव जी इसी भाव से भरे पड़े। ऐसे बीच बीच में भगवान उन्हें ऐश्वर्य की लीला दिखा करके कभी कभी भाव भर देते हैं कि ईश्वर हैं, लेकिन ज्यादातर यही भाव बना रहता है कृष्ण मेरे पुत्र हैं। श्री वसुदेव जी सामान्य गृहस्थों की भांति अपनी दशा को श्री नारद जी के सामने व्यक्त कर रहे हैं। मैं भगवान का भजन किया, भगवान मुझे प्राप्त भी हो गए, लेकिन बताओ, मैं भगवान का भजन किया प्रजार्थ, प्रजा प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, न तो मोक्षाय। मैं कभी उनसे कामना ही नहीं किया कि हमको मुक्त कीजिए। क्या कहें, मोहितो देव माया, मैं भगवान की माया से ठगा गया। कुछ वसुदेव जी अनुभव कर रहे हैं, चाहते थे, जोर लगाते थे कि कृष्ण को मैं भगवान समझूं, कृष्ण को प्रणाम करूं, कृष्ण का इस तरह चिंतन करूं, लेकिन यह वात्सल्य भाव ही उभर जाता था। तो वे सोचते हैं कि भगवान की माया हमको कंट्रोल कर रही, ईश्वर भाव होने ही नहीं देती है, पुत्र भाव रखती है। यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है जीव की, भगवान के प्रति इस प्रकार का प्रेम। लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम में ये सब बातें दी गई हैं। वसुदेव जी तो महाभाग्यवान हैं, कृष्ण उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम लोगों की जो स्थिति है संसार में, खास करके गृहस्थों की, तो वास्तव में शोचनीय स्थिति। पुत्र में ममता है, पत्नी में ममता है, धन में, घर में, सब में, पर इन ममताओं से, इन स्नेहों से जीव को मुक्त होना होगा, मोक्षाय, और श्री कृष्ण को ही अपने बंधु के रूप में मानना चाहिए। तो वसुदेव जी के लिए वसुदेव जी के वाक्य की भी फिटिंग नहीं है, योग्य नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए योग्य, हमें इसे ग्रहण करना चाहिए। मैंने भगवान का भजन मुक्ति के लिए नहीं किया, संसार बंधन बढ़ाने के भाव से और प्रश्न उनका भजन किया। तो अब वे कह रहे हैं, जथा विचित्र व्यसना भवद्भिर विश्वतो भयात मुच्ये मह्यंजसा अंजसाधा तथा नह साधि सुब्रत। हे सुब्रत, हे सुंदर व्रत का पालन करने वाले, निरंतर विष्णु की आराधना में आप रहते हैं, मैं जिस तरह से इस विचित्र दुखमय संसार से मुक्त हो जाऊं और साक्षात मुक्त हो जाऊं, इस प्रकार से मैं साधय, मुझको शिक्षय, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे ट्रेनिंग दीजिए। आप हमारे घर में आए हैं तो यहीं पर आप रहिए कुछ काल तक, और हमें शिक्षा दीजिए, हमें बताइए कैसे मैं इससे मुक्त हो पाऊंगा। साधि का अर्थ होता है साधय और शिक्षय। कोई शिक्षा कई दिन में पूरी होती है, इसीलिए वसुदेव जी कहते हैं कि हमको सिखाइए कि कैसे मैं संसार बंधन से मुक्त हो पाऊंगा। विचित्र व्यसनार्थ, इस संसार में विचित्र विचित्र व्यसन है। वास्तव में आप जब विचार करें ध्यान से, तो सुखों का उतना प्रकार इस संसार में नहीं है, भोगों का उतना प्रकार नहीं है जितना दुखों का प्रकार है। भगवान बुद्ध देव ने तो कहा है यह केवल दुख ही दुख है, और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम, ये दुख का आलय। परंतु आश्चर्य है कि मनुष्य यहाँ पर हमेशा सुख ही देखते हैं। मनुष्यों के विषय में तृतीय स्कंध में ये विवरण दिया गया है, मैत्रेय जी बोलते हैं तो कहते हैं दुखे च सुखमानिना। मनुष्यों की ऐसी चेतना होती है कि वो दुख में ही सुख मानते हैं, एकदम विपरीत बुद्धि है। दुख को दुख समझना चाहिए, लेकिन मनुष्य दुख को दुख नहीं समझता, इसी संसार में अपनी सुखद स्थिति बनाए रखना चाहता है, टेम्पोररी क्षणिक संबंधों को ही पोषता रहता है। कोई संबंध नहीं है, मिलन अकस्मात हो गया है, फिर भी आदमी अपने प्राकृत संबंधों को ही भाषा द्वारा, गीत द्वारा, जैसे तैसे और दृढ़ करता जा रहा है, दृढ़ करता जा रहा है। ये खतरनाक स्थिति है, बहुत प्रकार के दुख हैं इस संसार में। जैसे आप सभी जानते हैं तीन प्रकार के दुख हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, और एक एक के भी लाखों लाख प्रकार हैं दुख के, तो इसको विचित्र व्यसन कहते हैं। यह संसार विचित्र विचित्र प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। तो भवत भी हे भगवान, आपकी कृपा से मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊं, इस तरह से मुझे आप शिक्षा दीजिए, मुझे सिखाइए, मुझसे अभ्यास कराइए कि मैं कैसे इस दुख से मुक्त हो पाऊंगा। श्री नारद जी हंसने लगे, लेकिन अपनी हंसी को व्यक्त नहीं कर रहे थे। ये क्या विचार है यह? नारद जी तो ऐसा अनुभव कर रहे थे कि मैं यहाँ कैसे आकर फंस गया, और मैं भागवत धर्म का उपदेश भगवान के बाप से करूं। बताइए। और पूछे, लेकिन फिर भी श्री नारद जी, जैसे पहले वसुदेव जी ने कहा था, स्वस्थे सर्वदेहिना, वसुदेव जी के लिए नहीं लेकिन जनता के हित के लिए भागवत धर्म पर प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब पूछा वसुदेव जी ने, तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, जब इस प्रकार से प्रश्न किया वसुदेव जी ने, तो श्री नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रीतस्तमाह देवर्षि हरे संस्मारितो गुणैः। प्रश्न किसके द्वारा किया गया है? वसुदेव जी के विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वसुदेवेन धीमता, धीमता वसुदेवेन, धीमान, धी का अर्थ होता है बुद्धि, परम बुद्धिमान, परम विद्वान श्री वसुदेव जी के द्वारा प्रश्न किया गया है। वसुदेवेन धीमता, राजन एवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता, प्रीतो तमाह देवर्षि हरे संस्मारितो गुणैः। तो श्री नारद जी इस प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान के गुणों का उन्हें स्मरण आने लगा। एक प्रश्न होता है कि क्या इसके पहले नारद जी को भगवान के गुणों का स्मरण नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरे गुणों का स्मरण हो रहा था। अब उनको वह स्मरण आने लगा कि किस प्रकार श्री भगवान वसुदेव जी के पुत्र बने थे, वो सारे गुण याद आने लगे। भगवान किस तरह अपने पिता से, अपने पिता के वात्सल्य की अपेक्षा करते हैं, और किस प्रकार मथुरा में जन्म लेकर एक भीत व्यक्ति की तरह, डरे हुए व्यक्ति की तरह अपने पिता की गोद में मथुरा से गोकुल जा रहे थे, ये सब बातें याद आने लगी नारद जी को। इसलिए कहा गया हरे संस्मारितो गुणैः, भगवान हरि के, श्री कृष्ण के गुणों का बहुत बहुत स्मरण उनको आने लगा। वे बहुत प्रसन्न हुए, तो अपनी प्रसन्नता का आविष्कार कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं, प्रीति में आविष्करोति, अगले श्लोक की टीका में तो श्री नारद जी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। सम्यग एतद् व्यवसितं भवता भर्तर्षभ, नहीं भर्तर्षभ नहीं, सात्वतर्षभ। सम्यग एतद् व्यवसितं भवता सात्वतर्षभ, हे सात्वत वंशियों में श्रेष्ठ। श्री नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी आप यादवों में सर्व मुकुटमणि हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। आपका निर्णय अर्थात भागवत धर्म के विषय में जो आपने प्रश्न किया और इसे सुनना चाहते हैं, तो आपका निर्णय बिल्कुल उचित, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप विश्व का पालन करने वाले, विश्व को सुख देने वाले भागवत धर्मों के विषय में पूछ रहे हैं। जत्वं पृच्छसि भागवतान धर्मांस्त्वं विश्व भावना, विश्व भावन, विश्व का यहां अर्थ है विश्वस्थित जीव, इस विश्व में अनेक प्रकार के जीव हैं, तो इन जीवों का वास्तविक के कुशल ये छह में भागवत धर्मों के ज्ञान से और उनके आचरण से होगा। तो आप जीवों के हित के लिए प्रश्न किए हैं, यह आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न भी पूछने की योग्यता होती है, क्या पूछा जाए किसी से। आजकल बहुत बहुत प्रश्न लोग पूछा करते हैं और कई प्रश्न तो बिल्कुल बेढंगा होता है, वक्तव्य विषय से उसका कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, कितने सीमित शब्दों में प्रश्न पूछे गए हैं भागवत धर्मों के विषय में आप कहिए। तो श्री नारद जी एक प्रकार से संकेत कर रहे हैं कि आपका जो प्रश्न है भागवत धर्मों के विषय में, तो भागवत धर्म वास्तव में विश्व के समस्त जीवों के मंगल के लिए होता है, हित के लिए होता है, या आपके लिए मंगल के लिए नहीं है। अब आपका कौन सा मंगल बाकी है, मन में नारद जी ये बात सोच रहे थे। विश्व भावना, भाव का अर्थ होता है पोषण करना और भाव का अर्थ है प्रेमवान करना, भाववान करना।